लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कनाडा में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। आज भी वैचारिक उपनिवेशीकरण के कई रूप हैं जो रद्द संस्कृति के प्रति अभिमुख हैं, जो सबसे कमजोर और दुर्बल लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं। गरीब, आप्रवासी, बुजुर्ग, बीमार, अजन्मे, ये सब कथित भले समाजों में भुला दिए जाते हैं। 28 जुलाई को प्रकाशित संत पापा फ्रांसिस के इस ट्वीट संदेश में उन क्रूर तथ्यों का सार निहित है जो आज हमारे आधुनिक समाज में हो रहे हैं और जिनके प्रति लोगों में चेतना जागृत करना संत पापा फ्रांसिस ने अपना मिशन मान लिया है। विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस इस समय कनाडा की 6 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा पर हैं। आवासीय स्कूलों में कैथोलिक कलीसिया के मिशनरियों के सहयोग हेतु क्षमा याचना से पूर्ण इस प्रेरितिक यात्रा को इसीलिए प्रायश्चित तीर्थ यात्रा निरूपित किया गया है। यात्रा के चौथे दिन कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष संत पापा फ्रांसिस ने कनाडा के गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिज्ञों तथा कूटनीतिज्ञों से मुलाकात कर उन्हें अपना संदेश दिया। बुधवार प्रातः एडमंटन से लगभग 4.5 घंटों की विमान यात्रा के उपरांत संत पापा फ्रांसिस सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसे फ्रेंच भाषा भाषी प्रांत केबेक पहुंचे। सिटाडेल डे केबेक में विमान से उतरकर संत पापा व्हीलचेयर पर बैठे, जिनका अभिवादन देशज लोगों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारियों ने किया। जैसे ही संत पापा का काफिला हवाई अड्डे से शहर के लिए रवाना हुआ, कई लोग सड़क के ओर छोर एकत्र हो गए ताकि दया और विनम्रता की इस महान हस्ती की एक झलक पा सकें। सिटाडेल डे केबेक में कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष और वैटिकन राज्य के राष्ट्राध्यक्ष संत पापा फ्रांसिस का स्वागत लाल वर्दी और काली टोपी पहने गार्ड ऑफ ऑनर सहित किया गया। सिटाडेल डे केबेक उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विशाल ब्रिटिश किला है, जिसके समक्ष इब्राहिम के मैदानों नामक एक विशाल उद्यान है। यह कनाडा के गवर्नर जनरल मेरी साइमन के आधिकारिक आवासों में से भी एक है, जो राज्य की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ की प्रतिनिधि हैं। सिटाडेल डे केबेक के केंद्रीय भवन में संत पापा फ्रांसिस ने कनाडा की गवर्नर जनरल मेरी साइमन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अलग अलग औपचारिक मुलाकातें की और इसके बाद वे देश के वरिष्ठ प्रशासनिक और नागर अधिकारियों, राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों से मिले। केबेक के ऐतिहासिक सिटाडेल में एकत्र कनाडा के उच्चाधिकारियों के समक्ष संत पापा फ्रांसिस का अभिवादन करते हुए कनाडा में महारानी एलिजाबेथ की प्रतिनिधि गवर्नर जनरल मेरी साइमन ने कहा, परम पावन संत पापा, कनाडा की यात्रा करने के लिए हार्दिक धन्यवाद, जिसे आपने प्रायश्चित तीर्थ यात्रा का नाम दिया है। हम कनाडा के इस ऐतिहासिक गढ़ में एकत्र हुए हैं, जहां कहानियां साझा की जाती हैं और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इस यात्रा के द्वारा आप दुनिया को संकेत दे रहे हैं कि आप और रोमी कैथोलिक कलीसिया सुलह, उपचार, आशा और नवीकरण के हमारे पथ पर हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीमती मेरी साइमन ने आगे कहा, चंगाई या उपचार एक लंबी यात्रा है, यह कोई मंजिल नहीं है। इसमें समय लगता है, यह धीरे धीरे सावधानी से शुरू होती, हमें आगे ले जाती, लेकिन अन्य कई दिशाओं में भी हमारा मार्गदर्शन करती है। उन्होंने कहा, आपकी इस यात्रा के दौरान मैंने अब तक जो देखा है उससे मुझे बहुत आशा है। कनाडा पुनर्मिलन की प्रक्रिया में परम धर्म पीठ के साथ मिलकर शांति और शिक्षा को बढ़ावा देने, बाधाओं को दूर करने, गरीबी और बीमारी से लड़ने और विश्वास के पुनर्निर्माण जैसे अन्य वैश्विक मुद्दों पर काम करने के लिए तत्पर है। आपके प्रयासों के लिए हम आभारी हैं। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संत पापा फ्रांसिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संत पापा में सुनने और समझने की अपार क्षमता है तथा भलाई करने और उपचार ढूंढने में वे अग्रणी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह संत पापा द्वारा आवासीय स्कूलों में मूल निवासियों की नष्ट हुई संस्कृतियों का खंडन वास्तव में एक साहसिक कृत्य था। ट्रूडो ने कहा कि जैसा कि संत पापा ने कहा है, क्षमा मांग लेना ही मुद्दे का अंत नहीं है, यह आगे बढ़ने का प्रथम चरण है। उन्होंने कहा, सोमवार को मैंने कई मूल निवासियों के संग बैठकर संत पापा फ्रांसिस के मार्मिक शब्दों को सुना और प्रतिक्रियाएं भी सुनी। इसीलिए मेरा मानना है कि हर कोई उनके शब्दों से वह ग्रहण करेगा जिसकी उसे जरूरत होगी, किंतु इसमें जरा भी संदेह नहीं कि आपके शब्दों ने कनाडा के सभी लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा है।
As your holiness has said, begging pardon is not the end of the matter. It is a starting point, the first step. On Monday morning, I was sitting with survivors and I felt their reaction to your apology. Each will take from it what they need, but there's no doubt that you had an enormous impact.
इन अभिवादनों के उपरांत संत पापा ने देश के वरिष्ठ प्रशासनिक और नागरिक अधिकारियों, राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों तथा मूल निवासियों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने एक बार फिर आवासीय स्कूलों में सही गई पीड़ा के लिए कैथोलिक कलीसिया की क्षमा याचना को दोहराया। साथ ही उन्होंने विश्व के लोगों से सृष्टि की देखभाल, परिवार की रक्षा और सभी वैचारिक उपनिवेशवाद के खिलाफ देशज लोगों के महान मानवीय मूल्यों से प्रेरित होने की जोरदार अपील की।
केबेक शहर में बुधवार को पहली मुलाकात में संत पापा फ्रांसिस ने गवर्नर जनरल मेरी साइमन और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उनके स्वागत के शब्दों के लिए धन्यवाद दिया तथा देश की असाधारण प्राकृतिक विरासत एवं इसकी अत्यधिक खूबसूरती की सराहना की। उन्हें संबोधित कर संत पापा ने कहा,
Me complace dirigirme a ustedes, que tienen la responsabilidad de servir.
मैं आप सभी को संबोधित करते हुए खुश हूँ जिन्हें इस महान देश के लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी है जो एक असाधारण प्राकृतिक विरासत को दर्शाता है। उन्होंने इस सुंदरता के बीच मेपल जंगल की याद की जहाँ के पेड़ों की पत्ती को राष्ट्रीय ध्वज में प्रतीक के रूप में लिया गया है। कनाडा के इतिहास की याद करते हुए उन्होंने कहा कि मेपल पेड़ अतीत की कनाडा में उपनिवेशवाद के आगमन से पहले की कई पीढ़ियों की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि बड़े आकार की मेपल की पत्ती जो प्रदूषित हवा को अपने में सोख लेती एवं बदले में ऑक्सीजन देती है, हमें सृष्टि की सुंदरता पर विस्मय करने और देशज लोगों की संस्कृति के स्वस्थ मूल्यों की सराहना करने हेतु प्रेरित करती है। एडमंटन में संत पापा ने मूलवासियों से कई मुलाकातें की जिनमें उन्होंने उनकी मदद करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। संत पापा ने कहा, परम धम पीठ एवं स्थानीय कलीसियाएं आध्यात्मिक सामीप्य के विशिष्ट एवं उपयुक्त रूपों के माध्यम से मूलवासी संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु ठोस रूप से प्रतिबद्ध हैं, जिनमें मूलवासी लोगों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की भावना में उनकी सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषा और शिक्षा प्रणाली पर ध्यान देना शामिल है। उन्होंने संस्कृति को समाप्त करने के प्रयास में की गई हानि की निंदा की। उन्होंने कहा, मैं सबसे बढ़कर आत्मसात करने और मुक्त करने की सभी नीतियों के बारे सोचता हूं, जिनमें आवासीय स्कूल प्रणाली भी शामिल है। कई मूलवासी लोगों के परिवारों को उनकी भाषा, संस्कृति एवं उनके वैश्विक नजरिए को कम करके नुकसान पहुंचाया गया। उस निंदनीय प्रणाली जिसको तात्कालिक सरकारी अधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया, कई बच्चों को उनके परिवारों से अलग किया गया। उनमें विभिन्न स्थानीय काथिक संस्थाओं की हिस्सेदारी भी है। संत पापा फ्रांसिस, जिन्होंने एडमंटन के मूल वासियों से क्षमा मांगने में लज्जा महसूस नहीं किया, केबेक में भी वैसा ही किया। उन्होंने कहा, मैं इस देश के धर्माध्यक्षों के साथ अपनी गहरी शर्म एवं दुख व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी बुरे करतूतों के लिए क्षमा मांगता हूँ जिनको अनेक ख्रिस्टो ने मूलवासी लोगों के लिए किया है। यह अत्यंत दुखद है जब कुछ विश्वासी, जैसा कि इतिहास में उस समय हुआ, सुसमाचार के बजाय दुनिया की परंपराओं को अपनाया। संत पापा ने स्वीकार किया कि कनाडा के उत्तम विचारधाराओं को आकार देने में ख्रिस्त विश्वास की अहम भूमिका है, जिनकी इच्छा थी अपने सभी लोगों के लिए एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना। उन्होंने कहा, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के साथ साथ यह आवश्यक है कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक साथ कार्य किया जाए, जिसमें मैं जानता हूं कि आप सभी मूलवासी लोगों के वैध अधिकारों को बढ़ावा देने तथा उनके एवं गैर मूलवासी लोगों के बीच चंगाई और मेल मिलाप की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, यह सत्य एवं सुलह आयोग की अपील का उपयुक्त तरीके से प्रत्युत्तर देने की प्रतिबद्धता एवं मूलवासियों के अधिकारों को स्वीकार करने की चिंता में प्रकट होता है। संत पापा ने दोहराया कि परमधम पीठ एवं स्थानीय कार्तिक समुदाय मूलवासी लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु ठोस रूप से प्रतिबद्ध होना चाहते हैं। संत पापा ने कहा, हमारी यह अभिलाषा है कि हम कनाडा के मूलवासी लोगों एवं कलीसिया के बीच संबंध को पुनः नवीकृत करें, एक प्रेममय संबंध को जिसने असाधारण फल लाया है। खासकर गहरे घाव में वे समझने और चंगाई के लिए तैयार हैं। वैटिकन में मूलवासियों के प्रतिनिधियों को सुनने हेतु की गई 5 मुलाकातों के लिए आभार प्रकट करते हुए संत पापा ने कहा कि उस अच्छे संबंध को कनाडा में पुनः नवीकृत करते हुए मैं खुश हूँ। हमने जो समय व्यतीत किया उसने मुझे प्रभावित किया और मूलवासी लोगों ने जो पीड़ा सही उसके लिए खेद एवं लज्जा के साथ प्रत्युत्तर देने की तीव्र इच्छा जागृत हुई तथा सभी कनाडा वासियों के साथ भाईचारा एवं धीरज की यात्रा में आगे बढ़ने एवं हमेशा उम्मीद रखने की प्रेरणा ने प्रेरित किया। संत पापा ने गौर किया कि पीड़ा और तिरस्कार का इतिहास उपनिवेशवाद की मानसिकता का फल आसानी से चंगा नहीं हो सकता। उन्होंने गलतियों की निंदा एवं मूलवासियों से क्षमा याचना के साथ साथ बहुपक्षवाद का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, बहुसांस्कृतिकवाद एक समाज के सामंजस्य के लिए आधारभूत है, जो मेपल के पेड़ों के पत्ते के रंग के समान विविध है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि नए आगमन को स्वीकार करना एक चुनौती है और विविधताओं को स्वीकार करने एवं अपनाने की मांग करता है, संत पापा ने कनाडा की उदारता की सराहना की, जिसने कई यूक्रेनी और अफगानी शरणार्थियों का स्वागत किया है। उन्होंने अप्रवासियों के मामले में भय से आगे बढ़ने एवं देश की क्षमता के अनुसार उन्हें ठोस आकार प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया, ताकि वे समाज में जिम्मेदारी के साथ शामिल हो सकें। इसके लिए उन्होंने कहा कि अधिकार एवं लोकतंत्र अपरिहार्य है। संत पापा ने गौर किया कि कैथोलिक कलीसिया अपने सार्वभौमिक आयाम के साथ सबसे कमजोर लोगों के प्रति चिंता से मानव जीवन की उचित सेवा के द्वारा इसके अस्तित्व के हरेक क्षण में गर्भाधान से प्राकृतिक मृत्यु तक अपना विशेष योगदान देने के लिए तैयार है। संत पापा ने दुनिया में युद्ध पर भी चिंतन किया, जब यूक्रेन और कई अन्य जगहों में युद्ध जारी है, जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। उन्होंने कहा, हमें दुनिया को मित्रों और शत्रुओं में बांटने की जरूरत नहीं है, ताकि दूरी उत्पन्न की जाए और अपने आप को फिर से हथियारबंद किया जा सके। हथियारों की होड़ और निवारण की प्रणालियां शांति और सुरक्षा नहीं ला सकती। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम किस तरह युद्ध के पीछे नहीं चल सकते, बल्कि उसे रोक सकते हैं। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों का जवाब देने के लिए विरोध की श्रेणियों से आगे बढ़ने में सक्षम, रचनात्मक और दूरदर्शी नीतियों का आह्वान किया। संत पापा ने कहा कि हमारे समय की बड़ी चुनौतियां जैसे शांति, जलवायु परिवर्तन, महामारी का प्रभाव तथा अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन का आंदोलन, इन सब में एक बात आम है कि ये सभी विश्व स्तर पर हैं और सभी को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने गौर किया कि चूंकि ये सभी समग्र पर विचार करने की आवश्यकता की बात करते हैं, इसलिए राजनीति पक्षपातपूर्ण हितों में कैद नहीं रह सकती। संत पापा ने सभी दलों से आग्रह किया कि वे आज की कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए आम सहमति से हाथ मिलाकर काम करें। उन्होंने अपने वक्तव्य के अंत में कनाडा को उनके आतिथ्य सत्कार, ध्यान और सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं बड़े स्नेह से आप सभी को आश्वासन देता हूं कि कनाडा और इसकी जनता सचमुच मेरे हृदय के नजदीक है।
संत पापा फ्रांसिस ऐसे समय में क्वेबेक प्रांत आए हैं जब अनेकानेक फ्रेंच कनाडाई लोग अपनी मजबूत कैथोलिक जड़ों के बावजूद धर्म के प्रति उदासीन हो रहे हैं तथा धर्म और विश्वास रहित जीवन शैली का आलिंगन कर रहे हैं। गिरजाघरों की बेंचों पर इन दिनों शायद ही कभी कोई बैठा मिलेगा। सैकड़ों गिरजाघर बंद हो गए हैं और प्रांतीय सरकार ने सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों पर धार्मिक प्रतीकों को पहनने से प्रतिबंध लगा दिया है। मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय में ईश शास्त्र के प्राध्यापक जां फ्रांसुआ रसल ने कहा, बहुत सारे गिरजाघर बंद हो रहे हैं जो जनसंख्या द्वारा कलीसिया को दिए समर्थन के लुप्त होने का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने इसे क्वेबेक में कैथोलिक कलीसिया का पतन तक निरूपित कर दिया है। हालांकि प्रांत के लगभग 6,80,00,000 फ्रेंच बोलने वाले बपतिस्मा प्राप्त कैथोलिक हैं। 10% से भी कम लोग नियमित रूप से क्रिस्तियागो में शामिल होते हैं, जबकि कई दशकों पहले 90% लोग गिरजाघरों में प्रार्थना हेतु एकत्र होते थे। राजनीति और संस्कृति पर कलीसिया का जो व्यापक प्रभाव था वह लगभग पूरी तरह से फीका पड़ गया है, जिसे मौन क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस कैथोलिक कलीसिया ने क्वेबेक की स्कूल प्रणाली की स्थापना की थी और दशकों से उसे नियंत्रित रखा था, उसने आज शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में अपनी केंद्रीय भूमिका को खो दिया है। गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने कनाडा के इसी प्रांत का दौरा किया जो धर्म के प्रति उदासीन रहा है। वैटिकन न्यूज से बातचीत में विदेशी मिशन सोसाइटी के पेद्रो पेरना के अनुसार यह भावना दिलचस्प है कि हालांकि गिरजाघरों में एकत्र लोग संत पापा फ्रांसिस के दर्शन को उत्सुक हैं, किंतु क्वेबेक में सामान्य तौर पर कलीसिया एक वास्तविक अल्पसंख्यक तथ्य बनकर रह गई है। लोग धर्म पालन और विश्वास का अभ्यास नहीं करते, न ही वे गिरजाघरों में जाते हैं। क्वेबेक में जो लोग गिरजाघरों में जाते हैं वे आमतौर पर बुजुर्ग होते हैं या फिर वे लोग जो कार्यबल में शामिल नहीं होते हैं। यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कलीसिया में कौन है और समाज के सच्चे प्रतिनिधि कौन है, इसके बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। विदेशी मिशन सोसाइटी के पेद्रो पेरना की आशा फिर भी मजबूत है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि संत पापा को एक ऐसा शहर मिलेगा जो संवाद के लिए उदार होगा। लोगों की रुचि संत पापा के संदेश में है। वे क्या कहेंगे यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि उसके बाद की क्रिया क्या होगी। पेरना ने इस बात पर बल दिया कि यह वास्तव में सार्थक हो सकता है ताकि एक बड़ा सामाजिक संवाद शुरू किया जा सके और कलीसिया को देशज लोगों के साथ और पूरे समाज के साथ सार्थक आदान प्रदान शुरू करने के लिए एक स्थान दिया जा सके। संत पापा फ्रांसिस की क्वेबेक यात्रा को उन्होंने नवीनीकरण की यात्रा निरूपित कर कहा, हर बार जब संत पापा किसी क्षेत्र का दौरा करते हैं तब कलीसिया के सदस्यों में तथा धरती के नेताओं में नवीनीकरण की आशा पनपती है। उन्होंने कहा, प्रायश्चित की तीर्थ यात्रा करने के लिए उनका समय निकालना और यह कहना कि हम किसी के ऊपर नहीं हैं बल्कि हम सभी समान रूप से भाई बहन हैं, वास्तव में सार्थक है और साथ ही यह प्रभु येसु मसीह का संदेश है।
और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।